چند کلپس دکھاتے ہیں، شرک کی ساری ممکنہ صورتیں آپ کو اس میں دکھ جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ پہلی سلپ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، قبر کے سامنے باقاعدہ ایک شخص سجدہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ صریحاً ایک شخص ایک صاحب قبر کو سجدہ کرتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو بھی آپ شرک نہیں کہتے؟ یہ سب جو آدمی کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قوم للہ ہی کہنے تین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بتائیے، کسی کا صاحب قبر کی تعظیم میں یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا، یہ قبر میں گیا ہوا شخص کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیے، صریحاً قبر کے آگے ایک شخص گیا اور اوپر اس کے سبز سرخ چادر ڈال دی گئی کہ دیکھو تم آ کے ادھر بیٹھو اور بعض لوگ اس کو سجدہ کریں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب تھے، اور قبر پہ لوگ کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگیں گے؟ آپ بتائیے کہ دعا اگر قبر پہ جا کے مانگنی ہے تو پھر ہمیں اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ تو حرم میں کھڑے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم جا کے آپ پیر کی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ایک نہیں چار چھ قبریں ہیں، اور ان کے آگے لوگ باری باری آ کے جیسے خانہ کعبہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ طواف کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیا آپ اس کو شرک نہیں سمجھتے؟ تو پھر بتائیے کہ شرک ہوتا کیا ہے، کس چیز کو آپ شرک کہیں گے، اور کیا چیزیں ہیں جو، یہ دیکھیے چادریں چڑھانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے پیاری قبر تو کسی کی نہیں، کبھی کسی نے ایک لفظ بھی سنا کہ وہاں لوگوں نے چادر چڑھائی؟ اور آپ دیکھیے کہ لوگ اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ چادریں کہاں جاتی ہیں؟ دوبارہ بکتی ہیں، دوبارہ انہی کے کارندے کھڑے ہوتے۔ پڑی تھی ایک آرٹیکل سنا تھا کہ اس میں کس طرح سے وہ لوگ اپنے قبر پہ چادر ڈالتے ہیں، پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد انہی کے کارندے جو ہیں اس کو اٹھا کے ان کے ساتھ پھر جا کے انہیں دکانوں پہ بیچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا تو پورا بزنس ہے۔ ملتان کی کسی درگاہ کا ایک جائزہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پورے خاندان کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بھائی کا ہوٹل ہے جو قبر پہ لنگر کھلتا ہے، وہاں سے اس کا کھانا آتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جتنا کھانا روز آتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا پورا خاندان وہ کھاتا ہے۔ چادروں کا ایک کا بزنس ہے تو کسی کا بزنس جو ہے وہاں دودھ کی سبیل کا ہے، وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی رحمت ہے اللہ کی۔ کس طرح ایک زندہ انسان کو بٹھا کر اس کے آگے سجدے کریں؟ یہ دیکھیے، اب یہ جو جاہل لوگ سجدے کر رہے ہیں اور ان پہ چادریں ڈالی جا رہی ہیں، یہ دیکھیے یہ بزرگ ہیں، ان کے اوپر بیلیں کریں گے لوگ، نوٹ۔ یہ ایک ہمارے جیسا بزرگ ہوگا نا کوئی، اللہ کو پتہ ہے کون کیسا ہے۔ یہ دیکھیے سب بیٹھے ہوئے اور ابھی ایک شخص ان کے اوپر روپوں کی بیلیں ڈالے گا، اور ان کے سر پہ، ان کی ٹوپی پہ، اور یہ دیکھیے ان کے چہرے پہ کیا کوئی کسی قسم کا بوجھ یا ملال ہے کہ یہ شرک ہے؟ امی یدیب المضطر زیادہ، یہ رنگ رونقوں والا دین تو پھر اللہ سے دور کر دیتا ہے کہ تنہائی میں انسان روئے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ یہ دیکھیے اب ایک صاحب بیٹھے ہیں اور مرید آ رہے ہیں، باری باری یہ نیچے سرخ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر سجدہ کریں، بالکل وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آدمی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے یہ فیلنگس آئیں؟ یہ دیکھیں یہ شخص جھک نہیں سک رہا، بوڑھا شخص ہے، اور دوسرے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ آؤ تم جھکو، وہ پورا نہیں جھک پا رہا، صرف اس گو کی صورت میں ذرا جھکا کے بابا جی سے دعا کرا کے لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو حال پڑ جاتے ہیں ان جگہوں پہ آ کے، اور یہ صرف ایک کلپ پہ، لاکھوں کلپس آپ کو ایسے مل سکتے ہیں۔ اتنا شرک آج، اور وہی بات ہے نا کہ وہ کہا کہ کرے گر بت کی پوجا تو کافر کہلائے، اور اگر کوئی کسی چرچ میں جائے، مندر میں جائے تو کچھ اور کہلائے۔ اور اے مولانا حالی کا ایک پوری نظم ہے ان کی ایک، کہ جس میں انہوں نے اس درد کو پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ اس لاکھ خودی کے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے سارے شرک سے اور اس کے مظاہر سے بچائے، اور ہم سب اپنے دل میں اس گرج کو پیدا کریں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لیے بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یقین کریں اللہ بالا و برتر نہ ہوتا تو کبھی آج زمین پہ یہ لوگ کھا پی نہ رہے ہوتے۔ اللہ کو کیئر ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو ذرا کوئی لیٹ ڈاؤن کر دے، پش کر دے، ہم کہتے ہیں چھوڑو، ہم نہیں تم سے بولتے، ہماری تم سے کوئی نہیں بنتی۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو پرواہ ہی نہیں، وہ کہتے جو مرضی کرو۔ کہا اچھا چلو چلے، تمہارے بزرگ تمہارے بڑے یہ سب تو کرتے ہیں، ذرا ان سے ایک اور بات تو پوچھ دو۔ اب میں یبدا الخلقہ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کسی کرنی والی سے کہو کہ 10 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہوا، بچہ دے دو، اس کے بھی ٹھکوسلے سن لے۔ کس طرح لوگ بزرگوں کے پاس جا جا کے اولادیں مانگتے ہیں۔ بعض بزرگوں کی تو اسپیشلٹی اولاد ہے، بعض کی دولت ہے، بعض کا اقتدار ہے، بعض کی حکمرانی ہے۔ جیسے دنیا میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا اسپیشلسٹ، تو آپ کو پتا ہے کہ پیری مریدی کی زبان میں مختلف پیروں کے نام پہ معروف ہیں۔ آپ دیکھیں داتا ہجویری کا نام آتے ہی ذہن میں لوگوں نے کیا دیا ہوا ہے، رسک دیتا ہے، आप अब्दुल कादर जिलानी का कर लें नाम, तो आप देखिए आपके जहन में कोई और आएगा। याद रखिए ये अपने वक्त के बेहतरीन बुजुर्ग थे, तौहीद की दावत देने वाले थे। एक एक जिंदगी का लम्हा इनका अल्लाह की इताअत में गुजरा था। बाद वालों ने इनके रास्ते पे चलने की बजाय, यानी सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम की बजाय, लोगों ने इन्हीं को पकड़ना शुरू कर दिया, जो आज हमारा हाल है। काम नहीं करना चाहते, कहते हैं फलां बुजुर्ग है बस उसका पल्लू पकड़ लो बच जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे को ज़रा माँ के पेट में एक बच्चे की तख्लीक तो करके दिखाए। और कौन है जो ज़मीन व आसमान में से रिस्क देता है कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप कभी सोचते होंगे कि इन आयतों की फिर क्या तफसीर करते होंगे वो दीनी आलिम जो कबर परस्ती पीर परस्ती को शिर्क नहीं समझते। याद रखिए फमा ज़बाद अल हक़ इल्ला दलाल। कुरान के बारे में एक मिजाज समझ लें कि ये बंदे के साथ बिल्कुल वैसा मामला करता है जैसा इंसान इसके साथ करता है। लोगों ने इसी में से शिर्क की दलीलें ढूंढी, लोगों ने इसी में से नबी सल्लम के बाद नबूवत की दलील ढूंढ ली, लोगों ने इसी में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ना आने की दलील ढूंढ ली। 101 लोग झूठी दलील इसी कुरान से ढूंढ लेते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हिदायत के बाद गुमराह ना करे और इल्म के बावजूद हम कहीं जाहिल ना बन जाएँ। फरमाए कि अल्लाह के साथ कोई और भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा ज़मीनों आसमान में कोई गैब का इल्म नहीं जानता। अकीदा ठीक कर ले। बस लोगों ने ये गुमान रखा है कि हमारे पीर साहब को दिल की बात पता लग जाती है, इनको पता चल गया हम किस वजह से आए हैं, का कोई गैब नहीं जानता। और वो तुम्हारे माबूद तो ये तक नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बल इद्दार का इल्म हम फिल आखिरा, बल्कि आखरत का इल्म तो इन लोगों से गुम ही हो गया, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये इससे अंधे हैं। ये है वजह कि दुनिया के इल्म में इतना मसरूफ़ हुए कि आखरत के इल्म के लिए वक्त ना बचा। दुनिया का इल्म हासिल करने में इतना अपने आप को खपा दिया कि आखरत के लिए माल ना बचा, सोच ना बची, स्किल ना बची। दुनिया कमाने और दुनिया बनाने और दुनिया के इल्म के अंदर इतने हाइपर हो गए, दीन के इल्म के लिए फिर हिम्मत ही ना बची। आप देखिए कि आज कितने लोग हैं 20-20 साल तक स्कूलों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और स्टिल जाने को तैयार हैं। अभी स्पेशलाइजेशन चाहिए, फिर हर 2-4 साल के बाद रिफ्रेशमेंट चाहिए अपने पेशे की, लेकिन दीन के लिए कितना वक्त, कितनी तड़प। उसमें अगर अल्लाह दिल में डाल भी दे तो ये होता है झटपट, मिनटों में तैयार, क्विक सेट। देखिए कि जिस चीज़ की वैल्यू होती है ना, हम उसको टाइम देते हैं। आपके घर कोई आम मेहमान आता है ना, तो आप कहते हैं बस सब्जी चावल बना लेते हैं, जो भी जल्दी बन जाए। लेकिन कोई बहुत आपका प्यारा आता है ना, आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हलीम है ना, मैं बनाऊंगी प्यार से, कोई बात नहीं, बिरयानी है ना, मैं बनाऊंगी, क्योंकि वक्त लगेगा ना। बस छोटी सी इस मिसाल से ये समझ लें, जिस चीज़ की कदर हमारे दिल में होती है ना, नंबर एक हम उस पर वक्त लगाने को दिल की खुशी समझते हैं। मेहमान शर्मिंदा हो रहा होता है कि आपने इतना कुछ बना लिया, फिर क्या अब आप कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं ना। जिस चीज़ की बंदे के दिल में वैल्यू होती है ना, उस चीज़ पे हम माल खपाते हैं। कोई नहीं पूछता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैसे कितने होंगे, कोई नहीं पूछता कि वहाँ का टिकट कितना होगा, लेकिन अगर हम दीन का कुछ शौक रखें भी तो सबसे पहला क्वेश्चन आने लगता है जहनों में कि इसका ख़र्चा क्या होगा। कुछ भी हो, आपको अपना सारा जेवर भी बेचना पड़े तो फ्री है ये, आपको बिल्कुल फ्री कोई दे दे और आप सारा घर बेच के भी दें फिर भी फ्री है। क्यों? कि इस दीन के इल्म की कीमत कभी कोई ना दे सका ना कोई ले सका। और इल्म की तो कभी भी कहीं कीमत नहीं होती, कीमत तो होती है उन खर्चों की जो उस रास्ते के पड़ते हैं। कीमत इस चीज़ की होती है कि आप लोगों से तो नहीं मांगेंगे, चंदा सिस्टम तो नहीं करना चाहते आप। तो याद रखिए कि जब तक हमारा दिल इस दीन को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, हम इसके लिए ना वक्त लगाएंगे, ना माल लगाएंगे, ना स्किल्स लगाएंगे। और बाज़ औक़ात तो हाल ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, यानी किसी की बात मुझे हैरत होती है, कहते हैं कि आप कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, हमने तो नहीं कभी सुना था कि इसको पढ़ो और इधर जाओ और दिस एंड दैट करो। अल्लाह कहते हैं बल हम फी शक के मिन्हा, ये इससे शक में, अल्लाह से दुआ कीजिए ये शक दिल से निकाल दे कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं। जब तक यकीन नहीं, आप देखिए कि इंसान को यकीन हो ना कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, हर कीमत पर लेके आते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, कोई सिर्फ हमें ये कह दे ना कि सिर्फ एक दिन के लिए गोल्ड जो है वो आधी कीमत पे आ गया आज, जो कल थी वो और जो कल दोबारा होगी आज सिर्फ आधी कीमत रह गई है, एक दिन में जो ख़रीद ले, बताइए हम क्या नहीं बेचेंगे। जब भी इंसान के पास नेकी का कोई मौका आता है, उसको क्या सोचे, दिस इज़ द लास्ट चांस, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी कॉल है। कभी एयरपोर्ट पे आप हों तो आप सुनते हैं ना, आखिरी दफ़ा ये कहा जा रहा है कि मुसाफिर जहाज़ में आके बैठ जाए, फिर एक दो बार, फिर बार बार वो कहते हैं दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल कॉल। और उसके बाद क्या होता है, वो जहाज़ ले जाते हैं, आप बैठे मज़े करें, ड्यूटी फ्री शॉप में घूमें फिरें, वो कहते हैं आप अब कुछ और ही कर लें ज़्यादा टाइम, अब तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो हिदायत का जहाज़ भी जब इंसान के पास आए और इंसान उसकी वैल्यू ना पहचाने, अल्लाह ताला कहते हैं बल इदारक इल्मुम फिल आखिरा, इतना नॉन सीरियस समझते हैं आखिरत के इल्म को। आज दुनिया में छोटी सी चीज़ को देखने के लिए, एक जासूसी फिल्म देखने के लिए कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या आखिरत जो इतनी बड़ी हकीकत है इसको नहीं सोचते? कभी हम में से किसी ने इस बात पे गौर किया कि हम आखिरत में कहाँ होंगे? मैदान मख्शर के मराहिल, जन्नत जहन्नम, वहाँ के रास्ते वो क्या है? तो दुआ कीजिए हम अपनी नस्लों को इसमें खपा दें। जब हम इसमें खपाएंगे इंशाल्लाह दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदलेगा। वक़ाल लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन, और ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो क्या फिर वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? देखिए उनकी बेयकीनी इस जुमले से दिख रही है। ये खबरें हमको भी बहुत दी गई थी, पहले हमारे आबा अजदाद को भी दी जाती थी, मगर बस ये अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। नोट कर ले, ये कहकर आखिरत को पोस्टपोन करवाते हैं। अरे छोड़ो, कहाँ क़यामत आनी है, कभी आई? 2012 भी गुजर गया, क़यामत नहीं आई। ऐसे ही बातें बनाते हैं, क़यामत क़यामत, कोई क़यामत नहीं है। अल्लाह कहते हैं इनसे कह दो कि वो तो आएगी, कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या इंजाम हो चुका है, और ऐ नबी इनके हाल पर अंच ना करो। सच्चा दीन वाला तड़पता, उसको कुछ नहीं चाहिए होता लोगों से, वो देना चाहता है, लोग लेना नहीं चाहते। कभी आपको अपने बच्चों पे उस वक़्त दुख होता है जब आप पूरी संजीदगी के साथ उनके पीछे फिरते हैं? आजकल ही ले लें, रोज़े हैं ना। अक्सर माओं की तड़प एक होती है कि सहरी में बच्चे दो चार लुकमे ही खा लें, ये खाली सीरियल पे ना रहें, ये खाली दूध पे ना रहें, बड़ा लंबा रोज़ा है, इन्होंने बड़े काम करने हैं दिन में। लेकिन बच्चे क्या कह रहे होते हैं, भूख नहीं है, आदत नहीं है, नाश्ता नहीं करना। सिर्फ आप सोचिए कि एक माँ जो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए वो दूध ना पिए, माँ कितने जतन करती है, कभी मिल्कशेक बना देगी, कभी चॉकलेट डाल देगी उसमें, कभी आइसक्रीम डाल देगी, कभी कुछ, उसका शक्ल बदल बदल के पिलाती है ना। ये कोशिशें करने की ज़रूरत है हमें अपनी नस्लों को दीन पे लाने के लिए। ये ना फिर उस वक्त सोचिए कि भाई अगर इनकी मर्ज़ी है देख लो, सोच लो, अकल बहुत है, कोई अकल नहीं है इनमें। यकीन करें आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी यूथ को इस तरह से इंडिपेंडेंट कर देते हैं बाज़ दफ़ा कि हम उनके किसी मामले में नहीं बोलते, क्योंकि शुरू से तो उनसे पूछा कि क्या पहनोगे बेटा, क्या खाओगे बेटा, ये फ़्रॉक पहनना है। बास तो दुकानों पर खड़े करके बच्चों से चूज़ करा रही होती हैं कपड़े। याद रखिए आप उनको खुदा बना रहे हैं। बचपन से जब आप अपने बच्चे को ये फीलिंग देते हैं ना कि तुम्हारी अपनी चॉइस है, खाने की टेबल पे बिठा के माएँ पूछ रही थी क्या खाओगे, थप्पड़ मारने की ज़रूरत है, क्या नहीं खाओगे, यही खाओगे जो बना हुआ है, वल्लाह ही ये मजाक नहीं है। आज का शिर्क जो है ना, हमने अपनी औलादों को खुद सर कर दिया, हमने अपनी तरबियत के अंदाज में ये सब कुछ बता दिया कि देखो जो तुम्हारी राय है ना वो सबसे अच्छी है, जो तुम कहोगे वही सब ठीक है। कभी आज से 20-25 साल पीछे जाइए, घर में क्या पकेगा ये किसका फैसला होता था? नानी दादी बूढ़ियों से पूछते अम्मा आज क्या पकाएं, अम्मा जी बताइए आज क्या पकाएं, यही पूछते थे ना। बहुत हुआ तो किसी घर के बड़े में दो तीन औरतें हैं को, जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चलो आज क्या पकाएं। कभी बच्चों से पूछे बच्चे क्या कहेंगे, कोई कहेगा भिंडियाँ पकें, करेले पकें, तोरियाँ पकें? वो तो कहेंगे आज मैकडोनल्ड, कल KFC और परसों BFC और CFC और DFC और NOFC। मिन्नतें करके हम खुद बिगाड़ते हैं, शुरू से इनको दबा के रखें। क्यों आज के बच्चे इतने हाइपर हैं, कभी आपने सोचा? ये एक ऐसा वाजे तौर पे शिर्क हो रहा है कि जिसको आज हम कभी शिर्क समझते ही नहीं हैं। आप अपने बच्चों को अल्लाह की रज़ा से पालिए, आप उनके पेट ज़रा आधे खाली रख के पालिए। एक दिन अच्छा खिला रहे हैं तो दूसरे दिन उनको ज़रा दबा हुआ खिला दें। कई घर ऐसे, मैं कई मिसालें आपको दे सकती हूँ, जो खाना दाल साग पकती सिर्फ मियाँ बीवी खाते हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठे, कोई बर्गर, कोई हैमबर्गर, कोई कटलस, कोई कुछ, फ्रीज़रों ने भर के जान बना दी, हर वक्त घर में मीट मौजूद है। जो बच्चा खुचा सालन है शौहर और बीवी खाते हैं, बच्चे फ्रेश खाना खाते हैं। आप सोच सकते हैं ये बच्चे कल आपकी आंखों के आंसू बनेंगे कि आंखों की ठंडक बनेंगे? कल सारा दिन मुझे वो जुमला याद रहा कि अल्लाह हमारी औलादों और हमारे शौहरों को वो नेकियाँ करने की तौफीक दे कि जिनको देख कर हमारी आंखें खुशी से बहने लगें। यह को रोतो आइनन, कैसे औलाद आंखों की ठंडक होगी जब हम उनको हकीकत में हकीकत पसंद बनाएंगे, हम बाज बच्चों को ये सोच देने लग जाते हैं, नहीं नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, घर में फाकों की नौबत आई होती है फिर भी बच्चों की के लाड देख रहे होते हैं। रियलिस्टिक बन के पालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आखरत के इल्म के लिए संजीदा हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको ये सारी बातें कर दो और बता दो कि देखो जाकर ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ।